أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ نحل کے سات رکوع، یعنی ساٹھ آیات ہو چکے تھے، سورہ چودواں پارہ چل رہا ہے، اس کے آگے انشاءاللہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولو يؤخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليهم من دابة، کہ اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کو ان کے ظلم یعنی ناانصافی، اس کے احکامات کی خلاف ورزی پہ پکڑتا تو زمین پر کسی جاندار کو نہیں چھوڑتا. یہ دھمکی ایسی معلوم ہو رہی ہے کہ ایسی بڑی سزا ہوتی کہ کوئی جاندار بچتا نہیں زمین پہ انسانوں کی گناہ کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ رحم کرنے والے ہیں، مہلت دے رہے ہیں، ایسی بری سزا دیتے جیسا فرعون والوں کو ہوا، صالح علیہ السلام کی قوم جو وہ نہیں لائی تو زلزلہ آیا، پورے کے پورے تباہ ہو گئے، پورے جاندار ختم ہو گئے. تو بول رہے ہیں کہ اگر انسانوں کو اس کی ان کے ظلم پر یعنی ناانصافی پہ، قرآن اور حدیث کے خلاف جو کام کرتے ہیں اس پہ اللہ تعالیٰ اگر پکڑتے تو زندہ زمین پہ کوئی جاندار کو نہیں چھوڑتے، یعنی کسی جاندار کو، چاہے زمین میں ہو یا ہوا میں ہو. ولکن یؤخرہم الی اجل مسمی، لیکن اللہ تعالیٰ ایک وقت مقرر تک اس بات کو کی تاخیر کرتا ہے، یعنی مہلت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ حلیم ہے. حلیم کون ہوتا؟ جو سزا دینے کی طاقت رکھتا لیکن مہلت دیتا کہ بھئی یہ ٹھیک ہو جائیں گے، آ جائیں گے سیدھے راستے پہ. تو اللہ تعالیٰ حلیم ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، رحم کرنے والے ہیں. کبھی بندے ہیں، کمزور ہیں، کبھی نہ کبھی ریئلائز کر کے جو اپنے راستے پہ آ جائیں گے. تو اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ تاخیر کرتا ہے، کچھ ایک وقت مقرر تک مہلت دیتا ہے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، لیکن جب ان کا وقت آ جائے گا، یعنی عذاب کا یا موت کا جب وقت آ جائے گا، تو ساعت کس کو بولتے ہیں؟ یہ لفظ کے معنی یاد رکھنا ہے. قیامت کے واسطے بھی یہی لفظ آتا، ہم اس کو اردو میں قیامت بول دیتے ہیں. وہ جب بات آئے گی انشاءاللہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. ساعت کا مطلب لمحہ، مومنٹ جس کو بولتے ہیں، گھڑی. گھڑی بھر کی فرصت نہیں دے رہے ہیں آپ، ایک لمحے کی فرصت میں مجھے نہیں ہے، ناٹ فار اے مومنٹ، اس کو ساعت بولتے ہیں. تو جب ان لوگوں کا وقت ختم ہو جائے گا، یہ جو ناانصافی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، ان کا جب وقت ختم ہو جائے گا تو وہ جو اپوائنٹڈ ٹائم ہے، نہ اس کو پیچھے ہٹا سکیں گے نہ آگے بڑھا سکیں گے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے جو حکم ہیں پریسائز ٹائم پہ ہوتے ہیں. جیسا آج سن رائز ہے، اس کا ٹائم فکسڈ ہے. 8 جنوری کسی بھی سال آپ دیکھ لیجئے کہ سن رائز کا ٹائم وہی رہتا، سن سیٹ کا ٹائم وہی رہتا. لونار ایکلپس ہے، سولار ایکلپس ہے، ہماری موت وغیرہ کا وقت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے عذاب کا وقت ہے. تو یہ عذاب میں نہ ایک لمحہ آگے ہوتا ہے نہ ایک لمحہ پیچھے ہوتا ہے، اتنا پریسائز ہے. ہم تقدیر کا ترجمہ اندازہ کر بول کے کر دیا، اندازہ ایسٹیمیشن، رف ایسٹیمیشن ہوتا ہے. یقدر اللیل و نہار، رات اور دن کی وہی مقدر کرتا ہے. مطلب یہ ہے کہ رات اور دن جیسا پریسائز ہے سن رائز اور سن سیٹ، اس طریقے سے تقدیر پریسائز ہے کہ ایک لمحہ ادھر ادھر نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کا جب حکم آ جاتا ہے، جب اجل ختم ہو جاتی ہے. وَيَجَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے یہ لوگ ایسی چیزیں بناتے ہیں جو خود پسند نہیں کرتے. اس سے پہلے بات آ گئی، پچھلے سنڈے بات آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو بیٹیاں الاٹ کرتے ہیں، اپنے کو بیٹے الاٹ کرتے ہیں، اور اگر ان میں سے کسی ایک کو بیٹی ہوتی ہے تو یہ سوچتا ہے کہ بھئی اس کو بدنامی میں، میں شرمندگی میں پالوں یا پھر اس کو زمین میں دھسا دوں، ایسی بات کرتا ہے. اور آج بھی ہم ماحول میں دیکھتے ہیں کہ شادیوں میں دولہن والے دبے ہوئے رہتے، دولہے والے چھائے ہوئے رہتے، اپنے ڈکٹیشن چلاتے دولہے والے، دولہن والے دبے ہوئے بےچارے بچی والے. تو مجھے اچھا یاد ہے کوئی ایک شادی میں دولہے والے بن کے گئے تھے تو سب لوگ بول رہے تھے بھائی آج ذرا تن کے جانا، دولہے والے بن کے جا رہے ہیں پہلی دفعہ. بولے یہ ماحول ہو گیا، انسان کی جہالت کی ایک لمٹ ہو گئی ہے. تو جو چیز خود پسند نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کو اسکرائب کرتا. حالانکہ ایک حدیث میں بات آئی ہے کہ جس نے 3 لڑکیوں کی تربیت کی اور ان کی شادی وغیرہ کر دی وہ جنتی ہے. پھر آپ نے کہا، کسی نے پوچھنے پہ کہا کیا کسی نے 2 لڑکیوں کی تربیت کی اور اس کی شادی کر دی تو وہ جنتی ہے. तो जो साहबी रिपोर्ट करते हैं वो बता रहे हैं कि अगर हम एक लड़की के बारे में भी पूछते तो इंशाल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही बोलते थे। तो ये लड़के लड़कियों का क्या लगा है? आप लड़कियों को पसंद नहीं करते, आप चाहते हैं कि लड़के होना, और अल्लाह ताला को फरिश्ते बेटियां हैं बोल के बोलते जो आप खुद पसंद नहीं करते। बतसिफू अलसिनतुहुमुल कज़िबा अन्ना लहुमुल हुस्ना, और उनके जबान जो है झूठ बोलते हैं कि उन्हीं के लिए भलाई है। ला जरमा अन्ना लहुमुन नार, हकीकत यह है कि इनके लिए आग है। वह अन्नहुम मुफरतून, और ये इसमें पहले दाखिल किए जाए, पहला ग्रुप होगा जो आग में दाखिल किया जाए। इस किस्म की हरकतें जो अल्लाह ताला के साथ करता है। तल्ला ही लखद अरसलना इला उममिन मिन खबलिक, यानी अल्लाह की कसम, इतनी बड़ी कसम खा रहे हैं, इससे बड़ी कसम हो ही नहीं सकती। अल्लाह की कसम कि आपसे पहले हमने उम्मतों में रसूल भेजे, नबी भेजे, रसूल भेजे। रसूल क्या लेके आते? अल्लाह ताला का मैसेज लेके आते। जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, क्या लेके आए? कुरान का मैसेज लेके आए, भाई ये अच्छी चीजें हैं करो, ये बुरी चीजें हैं इससे रुको। रसूलों का मैसेज यही रहता। तो कसम खा रहे हैं अल्लाह ताला, अपनी कसम खा रहे हैं कि अल्लाह की कसम कि हमने आपसे पहले भी रसूलों को भेजा, लेकिन हुआ क्या? अब इसको ये इंपॉर्टेंट है। फज़ैयना लहुम शैतानु अमलहुम, लेकिन शैतान ने वो जो अमल करते थे उनको मुजयन करके बताया, बहुत अच्छा करके बताया। क्या शादी हो रही है, देखने के लाइट है, लाइटों पे बोले मालूम है ना, 30,000 रुपए लाइटों का खर्चे, जनाने मर्दाने में फूलों की लड़ी की चादर थी सब सेपरेट कर रही थी, क्या खर्चे हैं। खाने में आप लुखमी ले लो, हलीम ले लो, वो मिर्ग आ गया, मैं मिर्ग बोला तो कोई साहब करेक्ट बोले तो साहब मर्ग है वो, मर्गी है, मैं बोला बीमारी बिस्तर मर्ग है वो, बीमारी है वो। हर चीज देख लो आप, यानी वो बिरयानी आने तक इतना पेट भर जाता कि बदहजमी के वक्त बिरयानी खाना पड़ता, क्या हालत हो रही है। तो यहां ये बात आ रही है कि ये शैतान इन ये क्यों हो रहा है, शैतान ये अमल इनके अच्छे करके बता रहा है। मसनून शादी क्या ब्यूटीफुल शादी होती, बेहतरीन शादी होती। भाई आप खाजी साहब को बुलाइए मस्जिद में, बुलाइए खाजी साहब, आ जाते हैं अपने कुछ चंद दोस्त अहबाब जमा हो जाते हैं, चलो शादी हो गई, बात खत्म हो गई, वलीमा हो गया। हमारे पास सर्कल्स पे कंपटीशन है, मैं आज के हालात पे बोल रहा हूँ, किसी पे पर्सनल अटैक नहीं है। अरे उनकी शादी में बोले हर रात चल रहा, कोई साहब बोले 9,000 लोग, 9,000 11,000 थे हजरत, दूसरे साहब बोले 11,000 15,000 थे, आपको क्या मालूम, मैं उनके साथ उठता हूँ बैठता हूँ, बोले हर रात हो रहा गेस्ट का। कोई आदमी 15,000 लोगों को जान सकता है हमारे सर्कल्स के लोगों में? तो ये शैतान इनके इन अमाल को मुजयन करके दिखा दिया, जियारत कर दिए, चहलुम कर दिए, बरसी कर दिए, खर्जे लेके ऐसा खाना खिलाए, ना हदीस से साबित है ना कुरान से साबित है। तो ये दीन के कारोबार बता के शैतान आपको जो है भटका रहा है। ये पहले के जो रसूल आए थे उनकी कौमों को भी भटकाया और हमको भी। फिर ये कहा जा रहा है कि फहुआ वलीहुमुल यौमा, यही शैतान आज इनका दोस्त है, हमारा बेस्ट फ्रेंड शैतान है। दोस्त की बात को नहीं टालते हम, शैतानी वसवसे को नहीं टालते हम, शैतान हम तो हम वली अल्लाह नहीं है, हम अल्लाह के वली नहीं, अल्लाह के दोस्त नहीं है। वली अल्लाह किसको बोलते हैं? अल्लाह का दोस्त, अल्लाह ताला की बातों को सुनने वाला, हम शैतान के बातों को सुनने वाले। हमारा लिबास, उठना बैठना, जीना खाना पीना, हर चीज शैतानी है। कौन सी चीज हमारे घरों में मसनून है बताइए? मैं मेरे घर की बात कर रहा हूं, मैं किसी पे पर्सनल अटैक नहीं कर रहा हूं। कौन सी चीज मसनून है? पहले खाने के दस्तरखान बिछते थे, नीचे मसनून तरीका है जो इस्लाम कबूल कर रहे हैं, जो लेडीज और जेंट्स अमेरिका में वो इस्लाम कबूल करते ही पलंग छोड़ के नीचे बिस्तर करके सो रहे हैं। मगर हमारे पास ये है कि भाई कोई आ गया और बेडरूम्स देखा कि पलंगा नहीं है, अरे फकीरा है शायद इनके पास, गरीबा है शायद इनके पास, पलंगा नहीं है इनके पास, डाइनिंग टेबल नहीं है, डाइनिंग चेयर्स नहीं है, सोफा सेट्स नहीं है, खालीना नहीं है इनके पास। तो ये गैर मसनून जिंदगी को मुजयन करके बताना ये शैतान का काम है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो हुआ वली हूं अल यौम, तो आज के दिन भी जो है ये हम लोगों का सबका दोस्त है। वह लहू अज़ाबुन अलीम, और इनको जो है शैतान को फॉलो करने की वजह से तकलीफ दे अज़ाब। सोच के देखिए आप क्या जवाब देंगे। भाई मेरे से अगर सवाल हो गया कि भाई आप बेटियों की शादी करें, शादी में ये काई को करें, ये काई को करें, ये काई को करें, फलाने फलाने लोगों से आप वाकिफ थे, बच्चियों की शादी नहीं हो रही थी क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे, आप ये खुराफात नहीं करके अगर देते तो बच्चियों की, यतीम बच्चियों की, गरीब बच्चियों की शादी हो जाती थी आपके, क्या जवाब देंगे? मिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून, हमने जो तुमको दिया है वो खर्चो, जब हमने तुमको दिया है तो हमारे अहकाम के लिहाज से खर्चो, हमारा पहनना ओढ़ना, हमारे ख्यालात, तमाम चीजें जो है शैतान का ऐसा गलबा है और इतना जबरदस्त गलबा है कि हम समझ ही नहीं रहे हैं कि हम शैतान के गलबे में। खास बात यह है, सूरह कहफ में इंशाल्लाह बात पढ़ेंगे, आप पिछले दौर में पढ़ भी चुके होंगे कि शैतान इनको भटकाता है और ये समझते हैं कि बेहतरीन अमल कर रहे हैं, ये समझते हैं कि बेहतरीन अमल कर, हालांकि शैतान जो है भटका रहा है। कहा कि वमा अंजलना अलैकल किताबा इल्ला लितुबय्यना लहुमुल लज़ी इख्तलफू फीह, और हमने आप पर ये जो किताब, ये कुरान जो नाजिल की है उसका मकसद सिर्फ ये है कि ये लोग जिन चीजों में इख्तलाफ करते हैं उसको आप साफ साफ बयान कर दें, कुरान में क्या है, ये सही है, ये गलत है। ये किसी चीज में आपको इख्तलाफ हो रहा है, कोई आर्ग्यूमेंट हो गया, कुरान को रेफर कर लीजिए, हदीस को रेफर कर लीजिए। आज तक कोई करे? आज तक कोई करे क्या? पूछे आप, तलाक के हमारे पास तीन तरीके हो गए। एक तरीका है कि वो खाजी साहब के पास जाके फिर भी जो है वो प्रोनाउंस कर देते, एक तरीका यह है कि कोर्ट से दे देते, और बहुत कम के पास मसनून तरीका है कि वो तीन महीने वो बीवी को घर में रख के उसके बाद में या तो वापस लेते या उसको छोड़ देते। कितने लोग हैं ऐसा कर रहे हैं? क्या क्या कर लिया आप? कुरान हदीस का तमाशा बना दिया दुनिया के सामने। आपसे गैर मुस्लिम पूछ रहे हैं हाउ ईजी इट इज फॉर यू सब तलाक 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 एंड द वाइफ गोज अवे, क्या आसान है बोले? फिर ऐसा क्यों नहीं करता? एक बच्ची जा रही है उसको निकाह 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 बोल के लेके भाग जाओ, तीन वक्त निकाह बोल दिया था, तीन वक्त तलाक में जब तलाक हो जाता तो तीन वक्त निकाह बोलने में निकाह हो, निकाह के लिए जैसा आप गवाह बुलाते हैं पूरे लोगों को जमा करते हैं, इस तरीके से तलाक से पहले लोगों को जमा कीजिए, आपस में बात कीजिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए, गवाहों के सामने तलाक होना चाहिए, और फिर पूरी इद्दत कुरान में जो है लिखी हुई है, कुरान और हदीस के खिलाफ आप काम कर रहे हैं। तो कुरान काय के लिए नाजिल किया कि इसमें जो इख्तलाफ करते हैं ये इख्तलाफ को हर चीज को खोल खोल के बयान कर, और आगे बात आएगी कि हर चीज की तफसील अल्लाह ताला ने कुरान में बयान की, और ये कुरान क्या है, हुदा, ये रास्ता बताता है, रास्ते पे चलाता नहीं हाथ पकड़ के, रास्ता बताता है। इससे पहले भी बात आई, कोई बोले साहब अच्छे फ्रूट्स कहाँ मिलते हैं, तो बोले साहब देखिए सीधे हाथ से चले जाइए मौजूद जाए मार्केट पे, आपको फ्रूट्स मिल जाते, ये रास्ता बताना है, कुरान रास्ता बताता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ता बताए, हाथ पकड़ के किसी को नहीं चलाता, रास्ता बता दिए। वह रहमा, और ये रहमत है, रहमत के माने समझिए फायदा पहुंचाने वाली चीज, जैसा इंग्लिश में ट्रांसलेट करें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ा करेक्ट ट्रांसलेशन है, इन द नेम ऑफ अल्लाह द बेनिफिसेंट द मर्सीफुल, बेनिफिसेंट फायदा पहुंचाने वाला रहमान। तो ये कुरान जो है रास्ता बताता है जन्नत के, लिहाजा उस लिहाज से फायदामंद चीज है, लिकौमी युमिनून, ये ऐसी कौम के लिए जो ईमान लाती है, और ईमान नहीं लाती तो फिर ये कोई बात ही नहीं है। ये कुरान में क्या है नहीं मालूम, कुरान में क्या लिखा हुआ है वो तक नहीं जानते, कुरान में कितनी सूरतें हैं, कितने पारे हैं, मजमून क्या है कुरान का, बहसों में कुरान को कोट करते कुरान में रहते ही नहीं, और दो लोगों में बहस कर चली, एक साहब बोले कुरान में है हजरत, दूसरे साहब एहतमाम में खामोश हो गए, ना वो कुरान में हाइज नहीं हो, ना बहस करने वाले कुरान पढ़े, ना बहस सुनने वाले कुरान पढ़े, कुरान में है बोलते, इतना एहतमाम तो है कि खामोश हो गए, कुरान का नाम लिया मियां ने स्वास्थ्य खामोश हो गए। तो यहां ये बात आ रही है कि ईमान वालों के लिए जो रहमत है। अब एक बात समझिए कि ये कुरान इख्तलाफात दूर करता है, जन्नत का रास्ता बताता है, फायदा मंद है, बड़ा सुकून रहता है ईमान लानों के वाले के। ये कुरान सुबह उठते ही पढ़ने के बजाय अखबार उठ के पढ़ते आप, टॉप क्रिमिनल्स ऑफ द वर्ल्ड के न्यूज पढ़ते आप, अखबार में क्या आता, क्या आता अखबार में देखिए। मैं तो बरसों से जो है पढ़ू, मैं तरतीब बदला, मेरी भी ये आदत थी, सुबह उठते पहले अखबार पढ़ता था उसके बाद में कुरान पढ़ता था, एकदम ख्याल आया, मैं बोला ये हमारा अखबार है, आज क्या मैसेज है मेरे लिए, देखो आप अरबी में खाली पढ़ेंगे तो नहीं समझ में आएगा आपको, ऐसी जबान में तर्जुमा पढ़ना चाहिए जो आपको समझ में आए। आज मेरे लिए क्या मैसेज है कुरान में, पढ़ के उसके बाद में अखबार पढ़िए, आप हालात से वाकिफ रहना पड़ेंगे। पूरे क्रिमिनल्स की न्यूज, पूरी क्राइम की न्यूज, फ्रंट पेज से लेकर लास्ट पेज तक खाली सिनेमा एडवर्टीजमेंट, खाली जो है ऐसे लोगों की न्यूज जिनकी सूरत देखना भी जो है आपको वहशत होने लगेंगी रात में ख्वाब में अगर आया। ऐसे कुरान को छोड़ के ऐसी चीजों से हम अपनी सुबह शुरू करते हैं। वल्लाहु अंजला मिनस समाई मान फाहिया बिहिल अर्दी बादी मौतिया। अब यहां से बॉटनी की बात शुरू हो रही है और अल्लाह मीटियोरोलॉजी और बॉटनी एक एक सब्जेक्ट देख लीजिए आप। और अल्लाह ताला आसमान से पानी बरसाता है और उससे मुर्दा जमीन को उसकी मौत के बाद जिंदगी देता है। भैया जाड़ों का मौसम है, इसके बाद में इंशाल्लाह गर्मी का मौसम आएगा, पूरा सूख जाएगा, यहाँ से वहां तक पीला 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 हो जाएगा। फिर इंशाल्लाह जब पहली बारिश पड़ेगी तो पूरी हरियाली आ जाएगी, हरा हरा हो जाएगा। क्या होगा, वो जो डेड सीड्स जिसको बोल रहे हैं वो जर्मिनेट होंगे और फिर उसमें जो है जान आएगी। ये कौन कर रहा है, पानी कौन बरसा रहा है, बीजों में जान कौन डाल रहा है, मुर्दा जमीन को जिंदा कौन कर रहा है? अल्लाह ताला को पहचानो, यही अल्लाह है। अगर ना करे तो भूखे मर जाए। इन्ना फिजालिका ली आयात ली कौमी यस्मऊन, बेशक इसमें निशानियां हैं ऐसी कौम के लिए जो सुनते हैं। सुनते ही नहीं, समझते ही नहीं कुरान को, काय की निशानियां हैं? अल्लाह ताला के वजूद की, अल्लाह ताला की कुदरत की। बारिश ना बरसे हम नहीं बरसा सकते, बारिश बहुत बरसे हम नहीं रुका सकते। सोच के देखिए आप, अपनी मजबूरी को सोचिए और अल्लाह ताला की कुदरत को सोचिए कैसा उगाता है। अब उसके बाद में ये पूरी जुआलॉजी चल रही, बड़ी खास आयात है ये। इन्ना लकुम फिल अनामी लिबरा, और ये जो अनाम है, ये जो मवेशी हैं, हर्बीवरस एनिमल्स जिसको बोलते हैं, घास खाने वाले, यानी बकरी बैल गाय ऊंट वगैरह, इनमें तुम्हारे लिए सबक है। उनसे गिजा मिलती है, उनका ऊन मिलता है, उन पर सवारी करते हैं। अब एक एक मिसाल जो है अल्लाह ताला समझा के वो कर रहे हैं, इसको समझने की कोशिश कीजिए कि क्या अल्लाह ताला की कुदरत है। मुस्की को मिम्मा फी बुतूनी ही मिम बैना फरसिन व दमिन लबनन खालिसन साइगन लिशारिबिन, यानी हम तुमको उनके पेटों में से दूध पिलाते हैं जो बनता है उनके फर्स, जो एंटेस्टाइन में मेदे में जो टुकड़े रहते हैं उससे, और दम यानी खून से मिलके खालिस दूध बनता है जो बहुत मजेदार खुशगवार होता है पीने वालों के लिए। अब जरा एक एक चीज को यहां समझिए। अब फर्श का मतलब तर्जुमा जो है, अक्सर मैं जो ट्रांसलेशन रेफर कर रहा, गोबर कर दिए, नो साइंटिफिक नॉलेज। गोबर तो खत्म हो गया, फाइनल प्रोडक्ट हो गया, निकल गया गोबर। इट टुक मॉरिस बोके टू पॉइंट आउट फर्श के माने क्या है, मुसलमान कोई नहीं उठा इसमें। मॉरिस बोके बताया कि एंटेस्टाइन में गिजा पहुंचने से पहले टुकड़े टुकड़े रहती हो, वो लीवर एक केमिकल लेबोरेटरी पेट में लगी हुई है, उससे जो फूड एक्सट्रैक्ट होता है उससे, और खून से दूध बनता है, गोबर से नहीं बनता खून दूध। मॉरिस बोके बताया, हमारा कोई आलिम नहीं बताया, उससे दूध बनता है। और बोला कि क्या बेहतरीन तर्जुमा है, नहीं मालूम था हमको दूध कैसा बनता। तो जो मेदे में गिजा के टुकड़े टुकड़े चले जाते हैं उससे और खून से मिलके दूध बनता है, मेमोरी ग्लैंड्स में जाता है, फिर आप दूध निचोड़ देते हैं कैटल से। अच्छा, अब एक खास बात देखिए, अब आप ये गाय बकरी भैंस ऊंट को खाली घास खिलाते हैं, रॉ मटेरियल, प्रोडक्ट क्या निकलता है, दूध। फिर उसको काट के खाते हैं, प्रोडक्ट क्या निकलता है, गोश्त। कोई पूरी वर्ल्ड में कोई फैक्ट्री है जो घास से दूध और गोश्त बना सकती? इस पर तो चीखना दिल चाहता है कि अब भी अल्लाह ताला को कुदरत को नहीं मानोगे। कोई फैक्ट्री है जिसका रॉ मटेरियल जो है, आप ईंटा बना रहे हैं, आप मिट्टी डाल रहे हैं, वो कर रहे हैं, उसको सीमेंटिंग मटेरियल डाल के ईंट बना रहे हैं, हर एक का रॉ मटेरियल है, कुछ डालते कुछ निकालते, साबुन है भाई, तेल डाल रहे हैं उसमें, केमिकल्स डाल रहे हैं, कुछ हाइड्रोक्साइड डाल रहे हैं, मिला रहे हैं, उसको सेट कर रहे हैं, वो मोनोग्राम मार रहे हैं, अपना साबुन बन रहा। कोई रॉ मटेरियल डाल रहे हैं, कोई प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। कोई ऐसी फैक्ट्री है जिसमें घास डाल के दूध और गोश्त निकाल सकते हैं आप फाइनल प्रोडक्ट? कहीं सुने आप गोश्त की फैक्ट्री है, गोश्त की फैक्ट्री लगा रहे हैं, दूध की फैक्ट्री लगा रहे हैं? ये अल्लाह ताला की कुदरत है, कैसा बनता है। खुद हमारे जिस्म में देखिए, गिजा खाते हैं, आंसू बनते हैं, कान का वैक्स बनता है, थूक बनता है, बलगम बनता है, स्पर्म्स बनते हैं, खून बनता है, पस बनता है, पर्सपिरेशन बनता है, फ्लश बनता है, मसल्स बनते हैं, बोन्स बनते हैं। कुदरत है खुदा की। देखिए यहां हमारे इन इज्तिमाओं का मकसद ही ये होता है कि अल्लाह ताला की बड़ाई दिलो दिमाग में बैठ जाए, उसके बाद में सजदे में गिरे आप। खाली सजदा करने बगैर अल्लाह ताला को पहचाने के नहीं हो सकता। तो यहां ये बात आ रही है कि जो है इस तरीके से हम दूध बनवाते हैं। वो मिन समराती समराते नखली व अनाबी तत्तखीज़ूना मिन्हु सकरा, और फिर फलों में से खजूर और जो है अंगूर ले लीजिए आप, इससे अल्लाह ताला शराब बनवाते हैं। शराब में क्या होता है, इसमें जो अल्कोहल जो शुगर्स होते हैं इसमें, यानी अंगूर में और खजूर में जो शुगर्स होते हैं उसको फर्मेंट करने दिए आप, थोड़ा टाइम छोड़े तो ये शुगर्स अल्कोहल में कन्वर्ट होते हैं। अब ये पूरी अब यहां से आगे से मेडिसिनल केमिस्ट्री आ रही, ये जुआलॉजी है, उसके बाद में मेडिसिनल केमिस्ट्री आ रही। तो अब यहां ये खास बात यह है कि ये शराब भी बनती है जिससे नशा चढ़ता है, उसमें भी गौर कीजिए आप। अगर शराबी नहीं होते तो हम शराब की हुरमत को समझ ही नहीं सकते थे कि शराब क्यों हराम किया। मैं अपने आंखों से देखा हूं एक शराबी पी के मोहरी में पड़ा हुआ है, गटर में, मोहरी में पड़ा, पढ़ा लिखा आदमी, तो सोच के देखिए ऐसा बेहोश हो जाए। अगर वो शराबी नहीं बनता तो मुझे समझ में नहीं आता था कि कुरान में जो है शराब को क्यों हराम किया। सेंसेस चले जाते आपके, बोले इस कैफियत में नमाज से खरीब मत आओ, इसलिए कि तुम क्या कहते हो नहीं समझते तुम। हमारी नमाज तो शराबियों की नमाज है, हम क्या बोलते हैं हम समझते ही नहीं नमाजों में। तो बताया है कि इससे शराब भी बनती है, वह रिस्कन हसन और बेहतरीन रिस्क बनता है। अंगूर जो है शुगर का सोर्स है, खजूर कैलोरीफिक वैल्यू शायद ही किसी फ्रूट में इतनी हो जितनी खजूर में हो। भाई अरबस्तान का तो स्टेपल फ्रूट खजूर था, रोजे खजूर से खोले, बाद तो बस साहब ही ऐसे थे खाली खजूरों से रोजे खोले, फिर खजूरों से जो है सहर करे, खजूरों से रोजे रहे, खाने को कुछ भी नहीं था, इतनी एनर्जी खजूर में बनाई। किसने इन फ्रूट्स में जो है ये एनर्जी डाली है, ये क्या कुदरत है अल्लाह ताला की। इन्ना फी ज़ालिका लिआयातिल लिक़ौमी याक़िलून, बेशक इसमें निशानियां हैं अल्लाह ताला के वजूद और कुदरत की ऐसे लोगों के लिए जो समझते हैं। हम बेवकूफ हैं, हम ना खाते हुए गौर करते ना पढ़ते हुए गौर करते, कभी कुरान पढ़े इस तरीके से रुक रुक के एक एक बात समझ के। फिजिक्स की किताब पढ़ेंगे आप, इकोनॉमिक्स की किताब पढ़ेंगे, एक पैराग्राफ नहीं समझ में आएगा तो दोहराएंगे आप, दोस्तों को फोन करेंगे, दोस्तों के पास जाएंगे, प्रोफेसर के घर को जाएंगे, जाके बोलेंगे साहब ये चीज समझ, ये डेफिनेशन समझ में नहीं आ रहा। कभी कुरान के साथ जिंदगी में एक वक्त ऐसा हुआ कि किसी आलिम के पास आप पहुंचे हो के साहब ये मेरे मुझे ये आयत समझ में नहीं आ रही, जरा ये आयत समझा दीजिए। कभी नहीं हुआ, ना कुरान पे गौर करते ना खाने पीने पे गौर करते। वो ओहा रब्बुका इलन नहल, और आपके पालने वाले मालिक ने शहद की मक्खी को वही की। अब ये वही के माने समझने की कोशिश कीजिए, ये नहल इसी उन्वान से ये सूरत है, शहद की मक्खी को वही की। अब आपको कुरान में मिलेगा कि वही का मतलब मालूम होता है कि बात पहुंचाना, और इंग्लिश में इसका बेहतरीन ट्रांसलेशन होता कम्युनिकेट, कम्युनिकेशन, कोई बात को पहुंचाना। तो लिहाजा सूरह कसस की सातवीं आयत में अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को वही की, वही का लफ्ज आया है। मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा नबी नहीं थे, रसूल नहीं थे, उनको वही की। तो मालूम हुआ कि आम आदमी को भी अल्लाह ताला वही करते हैं। फिर सूरह मायदा की 111वीं आयत में आया कि हमने हवारियों को, ईसा अलैहिस्सलाम के डिसाइपल्स जो थे उनको वही की। तो मालूम हुआ कि कम्युनिटी को भी अल्लाह ताला वही कर सकते हैं, दिल में बात डालते हैं, उनके इशारा करते हैं। फिर उसके बाद में एक बड़ी खास बात यह है कि सूरह अल अनाम की 121वीं आयत में आया कि शैतान अपने दोस्तों को वही करता है। मैं भी जब फर्स्ट टाइम डिस्कवर करा तो एक अजीब किस्म की कैफियत हुई। तो वहां वही के माने समझ में आए, शैतान के वसवसों को यहां वही कहा गया। खोल के देख लीजिए सूरह मायदा के, सूरह अल अनाम की जो है 121वीं आयत है। औलिया उनके उनके अपने दोस्तों को जो है शैतान वही करता है, वो वही के माने बस यानी दिल में बात डालता। फिर आखिरी मिसाल यहाँ जो मिलती कि ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपने फॉलोअर्स को वही की, जब आपने दुआ की औलाद के लिए तो अल्लाह ताला ने कहा कि हाँ याहिया अलैहिस्सलाम इंशाल्लाह औलाद बनेंगे, तो वहाँ आपने कहा कि मुझे कोई निशानी दीजिए, तो बोले आप 3 दिन तक बात नहीं कर सकेंगे। तो आप अपनी कौम के सामने जाके यूहा उनके ऊपर वही की इशारे से बताया कि अल्लाह का जिक्र करो, उसको दूसरी जगह रम्ज के माने हैं, रम्ज का मतलब है इशारा करना। तो मालूम हुआ कि वही जो है सिर्फ रसूलों को और नबियों को नहीं होती, ऑर्डिनरी लोगों को भी अल्लाह ताला वही करते, शैतान भी अपने फॉलोअर्स को वही करता, इंसान भी इंसान को वही करता। अब हमारे जहन में वही के कुछ माने बैठे हैं, मैं ये अपनी फिलॉसफी से नहीं बोल रहा हूं, मैं कुरान हाथ में है, हजारों नुस्खे होंगे मस्जिद में, उठा के पूरे रेफरेंसेस यहाँ लिखे हुए हैं, देख लीजिए मैं गलत बोल रहा हूँ। तो वही के माने कम्युनिकेट करने के है। अब ये कम्युनिकेशन जो जानवरों में होता, दिल में बात डाल देना यानी उनकी फितरत में बात डाल देना, उनकी इंस्टिंक्ट में बात डाल देना। अब जैसा शेर का इंस्टिंक्ट है घास नहीं खाता हो, बकरी खाएगा हिरन खाएगा, आप बकरी के सामने बेहतरीन गोश्त डालिए, गोश्त नहीं खाएगी, उसकी इंस्टिंक्ट में है कि वो घास खाएगी। इस तरीके से वो औहा रब्बू का इलन नहल, तो अल्लाह ताला ने शहद की मक्खी को वही की, उसकी फितरत में डाल दी, उसके इंस्टिंक्ट में डाल दी। क्या बात डाली? अनित तखीजी मिनल जिबाली बुयूतं व मिनश शजरी व मिम्मा यारिशून, के अपना घर बनाओ पहाड़ों में और झाड़ों में, और ये लोग जो बुलंद इमारतें बनाते हैं इसमें अपना घर बनाओ। कैसे घर बनता मक्खी का, शहद की मक्खी का? वैक्स से, एक केमिकल कंपाउंड है हाइड्रोकार्बन्स में आता, मैं मुझे जहां तक याद है, वैक्स से बनाओ। अच्छा, फिर आप किसी शहद की मक्खी का पुट्ठा देखिए, परफेक्ट हेक्सागोनल होल्स रहते हैं उसमें, परफेक्ट हेक्सागोनल होल, क्या ज्योमेट्री है मक्खी को, ज्योमेट्री कैसा है? हम यूक्लिडियन मैथमेटिक्स, यूक्लिडियन ज्योमेट्री बोल के बैठे हुए हैं, मक्खी को ज्योमेट्री कैसा है? परफेक्ट हेक्सागोनल होल्स रहते हैं। तो यहां मक्खी की तारीफ करते हैं हम लोग, क्या बनाते साहब, मक्खियां बने। अरे जो मक्खी को बनाया उसकी तारीफ करो। इंसान की तारीफ करते, क्या निकाला साहब, कंप्यूटर। अरे जो इंसान को बनाया उसकी तारीफ करो कि कैसा इंसान बनाया। ये शैतान के दोस्त हैं जो इस तरफ चले जा रहे हैं। तो इनके अब फिर कहा कि सुम्मा कुली, ये वही की, सुम्मा कुली मिन कुली सम्राती, फिर हर फल से खा। खाने का प्रोसेस पूरा एक एक लफ्ज समझना कुरान का, बदतमीजी है बगैर समझे के आगे बढ़ना मेरे नजदीक। कुली, कुली का मतलब क्या होता, तू खा, पूरा खा अंदर, रस चूस फ्रूट्स का और पेट में ले ले, पेट में चले जाना हो, कुली का मतलब पूरा खाना है। फिर उसके बाद में कहा कि कुली मिन कुली सम्राट फसलों की सुबूला रब्बी का जुलूला, फिर तू अपने पालने वाले मालिक के रास्तों पर मूव कर चल, जलील होके फरमा बरदार होके इंस्टिंक्ट को फॉलो करते हुए। अब ये जो जुआलॉजिस्ट हैं जो बीज वगैरह पे काम कर रहे हैं वो ये बात निकले हैं, ये जो मक्खी का मूवमेंट है, दिस इज द बीज डांस, मशहूर टर्म है बीज डांस। तो मक्खी डांस क्यों करती है, दूसरे मक्खियों को कम्युनिकेट करती है कि कौन से झाड़ पे क्या है, कम्युनिकेशन भी होता है। मक्खी कम्युनिकेट करती है अपने डांस से, मूवमेंट बताती किधर जाना क्या जाना, अपने डांस से जो है मूवमेंट बनाती। अच्छा, अब यहां से हमारे समझने की बात आई है, ये तो मक्खी का हो गया। युखरिजु मिन बुतूनिहा, अब उसके पेट से निकलते हैं शराब, पीने की चीज, हमारी शराब नहीं। ये लफ्ज पे एक साहब जान खा गए थे मेरे, बोले आप कुरान में बता दीजिए शराब हराम है। मैं बोला हजरत आप उर्दू में शराब बोल रहे हैं उसको, खमर लफ्ज है अरबी में उसका, शराब किसी भी ड्रिंक को बोलते हैं आप अपने माने फिक्स कर लेंगे करके बोलेंगे ये कुरान में बताइए बोले तो। अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई गजब जो है कुरान में गुस्से के लिए आया है, आप वलीमे का खाना खा के आके बोले क्या गजब का खाना था साहब बोले, तो मैं अरबी अगर जानता हूं तो बोले काइकू साहब गुस्से में खिलाए क्या उन लोगों। तो आप अपने माने फिक्स कर लिए, जैसा क़ियामत के बारे में भी आगे बात आ रही है, इसको हटाइए जहन से, नीट ब्रेन से जो है समझने की कोशिश कीजिए कि तू इसको खाए, जब ये खा लेती है तो इसके पेट से पीने की एक शराब पीने की चीज निकलती है, मुख्तलिफुन अलवानुहा, इसके रंग अलग होते हैं। रंग का मतलब क्या होता है? रंग कॉम्पोजिशन की वजह से होते हैं, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ सकते हैं, कॉम्पोजिशन की वजह से रंग अलग होते हैं। आम का शहद अलग होता, सेब का शहद अलग होता, मक्खियां अपने सेट कर लेती हैं। आप किसी ऐसे मुकाम पे जाइए जहां शहद की मक्खियां, ये वैरायटी ऑफ हनी मिलती है आपको, सऊदी अरेबिया में मिल जाती है आपको वैरायटी ऑफ हनी मिलती है। अलग उसके रंग अलग, उसके मजे अलग। बात हकीमा बोलते फलाना शहद लो आप, आयुर्वेदिक में भी मिलता, यूनानी में भी मिलता। फिर कहे फी शिफाउल नास, अब ये जो शहद निकलता है उसके पेट से, इसमें शिफा है। क्या है? दवा है, बीमारियों की दवा है शिफा। तो मैं तो रिसर्च लेबोरेटरी में काम किया हुआ हूं, वॉल्यूम्स एंड वॉल्यूम्स ऑफ बुक्स ऑन हनी, वॉल्यूम्स ऑफ बुक्स, उसमें से एक भी किताब अपने लोगों की किसी के लिए, सब बाहर वाले लिखे, एक किताब हमारी नहीं है, फलाना साहब लिखे, फलाने कोई भी बाहर के लोग लिखे, कई वॉल्यूम्स लिखे हुए हनी के। अब यहां समझिए, हमारे पास उस्मानिया यूनिवर्सिटी में मनाजिर हसन गिलानी रहमतुल्लाह अलैह इस्लामिक स्टडीज के दीनियात के हेड थे, बेहतरीन किताबें हैं उनकी माशाल्लाह। तो मेडिकल कॉलेज में वो लेक्चर दे रहे थे, तो इस आयत का एक बहुत अच्छा इंटरप्रिटेशन वो किए कि यहां मालूम होता है कि जो शहद की मक्खी जो क्या लेती है झाड़ों से, झाड़ का एक्सट्रैक्ट, तो मालूम होता है कि झाड़ के एक्सट्रैक्ट में हीलिंग पावर है। एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी, हर चीज में झाड़ के एक्सट्रैक्ट लेते, जैसा मैं यहां एक लिस्ट लिखा, नीम के दरख्त से लेते, अदरक से लेते, मेथी से लेते, धनिया से लेते, अंजीर से लेते, लहसुन से लेते, मुख्तलिफ बीमारियों के जो है, लहसुन में ब्लड प्रेशर का बोलते हैं, अंजीर जो है बीपी और आपके आर्थराइटिस वगैरह के लिए काम आता, मेथी जो है बाज़ वक़्त शुगर में दी जाती है, धनिया वगैरह भी जो है एसिडिटी, नीम एंटीसेप्टिक वो रहता है, अदरक जो है हाजिमे के लिए देते, ये तमाम चीजें इसमें है। तो अब मनाज़िर हसन गिलानी रहमतुल्लाह अलैह बताए कि यहां इंसानों को अल्लाह ताला एक इशारा बता रहे हैं कि देखो प्लांट्स का अर्क लो, इसमें शिफा है। उसमें मैं लेबोरेटरी में साइंटिफिक काम करने की वजह से शायद मेरा दिमाग ये चला कि यहां एक और एक एडिशन है, खाली उसमें शिफा नहीं है, वो पी के पेट में प्रोसेस होके जो प्रोडक्ट निकलता उसमें शिफा है। मतलब यह है कि एक्सट्रैक्ट करो, फैक्ट्रियों में प्रोसेस करो, उसमें शिफा है। अब आप क्या करते हैं, पूरे जो है लहसुन ऑल निकल रहा, लहसुन लिए, लहसुन का पूरा एक्सट्रैक्ट जो है ब्लड प्रेशर के वास्ते पेशेंट्स को, स्किन डिजीज के लिए दे रहे हैं। तो मेजॉरिटी पूरे जो सिस्टम्स हैं हमारे, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी, जितने सिस्टम्स हमारे समझ में आते हैं, ये प्लांट्स के एक्सट्रैक्ट को लेके प्रोसेस करते हैं, उसको प्रोसेस कर। तो अब अगर गौर करने के वाले के लिए मेडिसिनल केमिस्ट्री का इतना बड़ा इशारा है, अगर आप गौर नहीं करें तो खाली इतना ही बोल के चले जाएंगे कि क्या है हजरत, बोले शहद में शिफा है, मालूम आपको कुरान में लिखा हुआ है, ये तर्जुमा हुआ, शहद में शिफा है ये तर्जुमा हुआ। तफसीर क्या हुई कि प्लांट्स के एक्सट्रैक्ट्स को अगर आप प्रोसेस करें तो वो दवा बन सकती है, बीमारियों के इलाज है, ये तफसीर है। ये तफसीर करने के लिए आपको मेडिसिनल केमिस्ट्री का बैकग्राउंड होना जरूरी है, मेडिसिन का बैकग्राउंड होना थोड़ा बहुत जरूरी है। वन मैन कैन नॉट बिकम एन एक्सपर्ट इन ऑल द फील्ड्स। तो इसीलिए मॉरिस बोके का ही कहना है कि भाई नो सिंगल पर्सन शुड एवर डेयर टू ट्रांसलेट द कुरान, देयर शुड बी अ बोर्ड ऑफ ट्रांसलेटर्स कंसिस्टिंग ऑफ एक्सपर्ट्स फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग अरबिक स्कॉलर्स। अरबी भी समझना है, हम एक साहब कर दिया तर्जुमा, अब उनका एक ग्रुप बन गया, एक दूसरे साहब करे उनका एक ग्रुप बन गया, इनको इकोनॉमिक्स नहीं आती, उनको पॉलिटिक्स नहीं आती, उनको नेचुरल साइंस नहीं आती, इनको लॉ नहीं आता, ये हालत हो गई हमारी। इसलिए डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, कोई साहब बोले साहब अपने पास फिरके इतने क्यों बन गए 73 फिरके, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द कुरान। द करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द कुरान इज अती अल्लाह व अती रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दो ओनली टू अथॉरिटीज, दो अथॉरिटीज को फॉलो करो एक ही फिरका रहेगा, इससे थर्ड अथॉरिटी को फॉलो करेंगे तो कई फिरके बन जाएंगे। यहूदियों में 72 थे, हमारे में 73 है, एक ही जो हदीस में बात आई, एक ही फिरका करेक्ट है जो कुरान और हदीस को फॉलो करता है, फिनिश। اچھا پھر آگے چلیے, ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون, تو اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وجود کی نشانیاں ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں, ریفلیکٹ کرتے ہیں بیٹھ کے. ہم تو ریفلیکٹ نہیں, دکارا لے کے کھاتے خالی. بعض وقت تمہیں وہ لوگ ہنستے بولے تو افطار ایسا ڈٹ کے کر کے آ کے مغرب کی نماز کو کر رہے ہیں تو دکار لیے تو پورے فروٹس کیا کھائے اس کی بو آ رہی, مگر کبھی یہ نہیں سوچے کہ بھئی کیا کھائے تھے, کیسا بنا اللہ تعالیٰ. ایک میز پہ اتنے میوے لگے ہوئے, موز بھی ہے, کھجور بھی ہے, سنترے بھی ہے, ابلی ہوئی دال بھی ہے, کیا کیا نہیں ہے دنیا بھر کی چیزیں, غور نہیں کرتے. تو جو تفکر کرتے, تو پہلی جگہ بات آئی کہ سننے والوں کے لیے آیات ہے, دوسری جگہ بات آئی کہ سمجھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں, یہ تیسری جگہ بات آ رہی ہے کہ غور کرنے والوں کے لیے. اب یہاں تفکر بھی جو ہے وریس کے سنس میں لے لیے اردو میں, چاہے بھی انہوں پریشان دکھ رہے ہیں, ہوسا فکروں میں مبتلا ہے. ارے فکر عربی لفظ ہے, فکر کا مطلب ریفلیکٹ کرنا, غور کرنا, پریشانی کا مطلب نہیں ہوتا فکر کا. پھر وہ معنی لا کے جو ہے قرآن کو مس انٹرپریٹ کر. اچھا واللہ خلقکم ثم یتوفاکم, اور اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا, یہ بھی فیکٹ ہے, اس پہ غور کرنا ہے. کس نے پیدا کیا بھائی؟ اگر والدین پیدا کرتے ہوتے تو ان کے انڈینٹ پہ بچہ بنتا تھا جیسا وہ چاہتے تھے. اگر ہم اپنی خواہش سے پیدا ہوتے تو اپنی مرضی کی ہم باہر نکلتے آ کے. تو اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا اور وہی تم کو وفات دے گا, وہی واپس لے لے گا. وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمْرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا, اور تم میں سے بعض ایسے ہوتے ہوں جو بالکل بڑھاپے کی ایسی عمر کو پہنچا دیے جاتے کہ ہر چیز جاننے کے باوجود کچھ نہیں جانتے. اور دسمبر میں شادیاں بہت ہوئے تھے, آج کل لائف سپین بڑھ گیا تو کئی لوگ ایسے دکھے 80-90 کے ایسے دکھے, لوگ ہاتھ پکڑ کے چلا رہے ہیں, وہ تعارف کر رہے ہیں تو کسی کو نہیں پہچان رہے. مجھے ایک ایسی ٹریجک واقعہ یاد ہے کہ کوئی محترمہ 90 برس کے اوپر تھی, بالکل ان کا بھی دماغ کام نہیں کرتا تھا, خالی بس نمازاں پڑھتے رہنا, اور وہ ہمیشہ یہی پوچھنا کہ بھائی نماز کا وقت ہو گیا, تو ان کے بچے بول دیتے تھے جی ہو, پوترے پوتے ہیں جی ہو گیا, تو وہ خالی نمازاں پڑھتے رہے. ان کے بڑے بیٹے کا انتقال ہو گیا, 65-70 ایئرس کے تھے, ان کے بڑے بیٹے کا انتقال ہو گیا. اب لوگ ان سے چھپائے, بولے بھائی یہ عمر میں ایسا صدمہ برداشت نہیں کریں گے. ایک کافی دن چھپا کے اس کے بعد میں بولے کہ بھائی آپ کے بیٹے کا نام لے کے بولے کہ آپ کا یہ بیٹا جو ہے فوت ہو گیا. بیٹے کو نہیں پہچانی انہوں نے, کون بولے میں نہیں پہچانتی, بولے ارے آپ کا بڑا بیٹا, نہیں میرا بڑا بیٹا نہیں, نہیں میں نہیں پہچانتی. آپ سوچ کے دیکھیے یہاں بات کیا آ رہی, علم کے باوجود یہ علم ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے, اب علم ہی نہیں ہے کہ وہ میرا بیٹا ہے. میں بنگلور میں ایک کارڈیولوجسٹ کو دیکھا تھا, بالکل کرپل, وہ ویل چیئر پہ بیٹھے ہوئے تھے بہت, وہ تو ان کے بیٹے بھی ڈاکٹر ہیں, تو وہ بتا رہے تھے کہ ہم ان سے کچھ مسئلے پوچھے تو کبھی ایک آدھ وقت برین کام کرا تو بولتے, نہیں تو موسٹ آف ٹائم از لائک این ایڈیٹ. اتنا بڑا ڈاکٹر, اتنا بڑا ڈاکٹر سٹی کا بیکار بیٹھا ہوا. اب اس کا جواب یہ معلوم ہے, ان اللہ علیم خبیر, لیکن اللہ تعالیٰ علیم ہے, اللہ تعالیٰ کے علم میں فرق نہیں آتا جیسا آپ کے ہمارے علم میں فرق آتا. میں ابھی ایک کنفیس کرتا ہوں, میں سنت پڑھ رہا تھا تو ایک آیت میں پڑھنا چاہ رہا تھا, بھول گیا, دو تین بار ٹرائی کر کے پھر دوسری آیت پہ شفٹ ہو گیا. بولا دیکھو آج یہ سمجھانے کا ہی ہے, اللہ تعالیٰ اشارہ دے رہے ہیں, شاید بڑھاپا آ گیا, دیکھو یاد ہی نہیں آ رہا. تو یہاں یہ بات سمجھنا ہے, اب مسنون دعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا اللہ مجھے ارذل العمر سے بچائیے. یہ عمر کی جو رزالت ہے, یہ عمر کی جو ایسی کمی ہے کہ جانتے بوجھتے کچھ نہیں جانتے, ایسے کنڈیشن سے مجھے بچائیے, دعا کرنا ہے. اچھا ان اللہ علیم خبیر, بے شک اللہ تعالیٰ علیم ہے, اللہ تعالیٰ کے علم میں ایسا وہ نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ بوڑھے نہیں ہوتے, اور خبیر ہے, قدرت رکھتے ہیں ہر چیز پہ, قدرت رکھتے ہیں. اچھا پھر اس کے بعد میں یہاں ریفرنس لکھنا بھول گیا, غالباً یہ ہندو پیپر میں کافی دن پہلے آیا تھا, یہ بڑی خاص بات تھی خدیر کے اوپر میں سمجھانا چاہ رہا تھا کہ برین سے الیکٹریکل امپلسز نکلتے ہیں, ڈاکٹرز بھی ہیں, کوئی میں غلط بولا ہوں تو جو کریکٹ کر دے سکتے ہیں, کہ برین سے الیکٹریکل, برین کی الیکٹریکل ایکٹیویٹی ہوتی ہے. تو یہ ڈسکور کیا گیا ہے کہ کسی انٹینشن سے پہلے किसी इरादे से 350 मिली सेकेंड्स में के पहले ब्रेन का इंपल्स आना शुरू हो जाता है। भाई आप इरादा करें मैं घर से निकलूंगा, ये इरादे से 350 मिली सेकेंड किसको बोलते हैं, एक सेकेंड का मिलियंथ पार्ट, 1/60, 1/1 followed by 6 zeros, उतने से सेकंड में आप इरादा करने से पहले वो इंपल्स आ जाता ब्रेन में। मतलब ये कि तकदीर का इंफॉर्मेशन आ जाता ब्रेन को। मैं इसलिए लिखा था क्योंकि यहाँ खदीर का लफ्ज आ रहा है, खदीर जो तकदीर फिक्स करता है, जो पावर है पूरा। अब आप यहां देखिए कि ये क्या एक्टिविटी है, इस पर जो है गौर तलब है। ये अखबार की न्यूज थी, वल्लाह फजला बाज़ुकुम अला बाज़िन फिर रिस्क, और बेशक अल्लाह ताला ने तुम में से बाज को बाज में रिस्क में फजीलत दी। बाज अमीर है बाज गरीब है, तो अमीर अपनी उससे अमीर नहीं है, अपनी इंटेलिजेंस से अपनी कोशिश से अमीर नहीं है। गरीब अपनी मजबूरी से गरीब नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है बेचारा वो ऐसा गरीब नहीं है। अल्लाह ताला जिसको चाहते हैं, बहुत से अनपढ़ों को जो है लखपति बना दिया, बहुत से तालीम याफ्ता फाखों में मरे हैं, स्पेशली जो ग्रेट लोग थे बहुत से ऐसे थे जो फाखों में मरे। तो यहाँ अल्लाह ताला जिसको चाहता है रिस्क ज्यादा देता है, जिसको चाहता है कम देता है। फमल लदीना फुज़िलू बिरादी रिज़्क़िहिम अला मा मलकत अयमानुहुम फहुम फीही सवाउन, तो जिसको अल्लाह ताला ने अपने फजल से नवाजा है दिया है, वो अपना रिस्क अपने गुलामों को नहीं देते कि वो गुलाम और वो दोनों बराबर हो जाएं दौलत में, नहीं देते। नौकर का पोजीशन नौकर के पोजीशन पे रखते आप, गुलाम का पोजीशन गुलाम के पोजीशन पे रखते। आपके पास अगर 10 लाख है तो 5 लाख गुलाम को देके, भाई तेरे पास भी 5 लाख है मेरे पास भी 5 लाख है, 5 लाख छोड़ो 5 पैसे नहीं देते। फिर अल्लाह ताला के बारे में ऐसी बात करते हो, पार्टनर्स बनाते हो, मखलूक में से उठा के अल्लाह ताला के पार्टनर्स बनाते हो। जब तुम अपना पावर दूसरों को नहीं दे सकते हैं तो अल्लाह ताला क्यों अपना पावर अपने गुलामों को देगा? सारी कायनात अल्लाह ताला की गुलाम है। मखलूक से उठा के जो है पत्थरों को सीमेंट को इसको उसको उठा के जो है नऊज़ु बिल्लाह अल्लाह ताला के मुकाम पे बिठा दिए हैं, तो इनमें जो है आइडल्स हैं, एंजल्स फरिश्ते हैं, नबी हैं, लीडर्स हैं, और फिर आपके अपनी खुद ख्वाहिश है, इनको उठा के जो है आप अल्लाह ताला के मुकाम पे बिठा देते हैं जब खुद नहीं चाहते किसी को। आफी भी नेमतिल्लाही यजहदून, तो क्या तुम अल्लाह ताला की नेमतों को जानते बूझते झुटलाते हो? झुटलाना क्या है? जो क्रेडिट अल्लाह ताला को देना था वो क्रेडिट किसी और को देना, यानी अल्लाह ताला के साथ दूसरों को शरीक करते हो और अल्लाह को अल्लाह की नेमतों को दूसरों की नेमत समझते हो। झुटलाने के माने शुक्र नहीं करने के भी आते हैं, और दूसरों का शुक्रिया अदा करना अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा नहीं करना, दूसरों का शुक्रिया अदा करना। जैसा किसी के घर में डिलीवरी हुई, बच्चा पैदा हुआ, अब वो डॉक्टर साहब के पास जाके ठहरे हुए दरवाजे पे, निकलते शुक्रिया डॉक्टर साहब बहुत आसानी से हो गया, अब आप वक्त पे आ गया, आप ऐसा अल्लाह ताला का जिक्र ही नहीं। नौकरी मिल गई, नौकरी मिलते हैं वो अपॉइंटमेंट लेके डायरेक्टर के पास गए, जाके वो पेटों पाँव को हाथ लगा रहे, वो कर रहे सर यू आर सो ग्रेट यू हैव गिवन मी दिस जॉब, वो अरे ही हैज नॉट गिवन यू द जॉब, अल्लाह ताला दिया है। तो यहाँ ये बात समझ, आफी भी नेमतिल्लाही यजहदून, तो क्या तुम अल्लाह ताला की नेमतों को, यजहदून का मतलब क्या है, जानते बूझते झुटलाना। तुम जानते हो कि ये नेमत अल्लाह ताला की तरफ से है, सेहत अल्लाह ताला की तरफ से, बीमारी अल्लाह ताला की तरफ से, सेहत मिलते ही जाके डॉक्टर का शुक्रिया अदा, दौलत मिलते ही वो किसी साहब को जाके जो है इन्फ्लुएंस का बोले, तो ये बात गलत है। वल्लिल्लाहि जाला लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजं व जाला लकुम मिन अज़वाजिकुम बनैनी व हफीदा, और अल्लाह ताला ने तुम्ही में से तुम्हारे जोड़े बनाए, मर्द के लिए औरत, औरत के लिए मर्द, और फिर जाला लकुम मिन अज़वाजिकुम और तुम्हारी बीवियों में से बेटे बनाए और पोतरे बनाए। देखिए बेटे और पोतरे में सिर्फ वाव का ताल्लुक है, बेट बनैनी व हफदा, बेटे बीवियों से बेटे बनाए और बेटों से पोतरे बनाए बोल के नहीं है, बीवियों से बेटे बनाए और पोतरे बनाए, मतलब कि जेनेटिक कंटिन्यूटी बता रहे हैं। देखिए जैसा बात एस्टैब्लिश्ड है, एक रिपोर्ट आई थी, वी हैव ए कॉमन मदर, बीबी हवा, उसके बारे में रिसर्च हुआ था तो बताए थे कि साउथ अफ्रीका में एक औरत है, औरत थी, तो अब उस औरत में पूरे जितने लोग पैदा हुए उसके जीन्स थे, जैसे आदम अलैहिस्सलाम थे, ये बात आगे भी आएंगी इंशाल्लाह, उनकी पूरी औलाद जो है उन्हीं से निकली है, तो वो जीन्स उनमें आदम अलैह, अब रिवायतों में ये आता है कि 60 फीट ऊंचे थे वो, 30-40 फीट चौड़े थे, तो पूरी जो इंसानियत आने वाली थी उनके जीन्स उसमें थे। भाई आप लोगों में अपने बेटों, बेटों के बेटे, बेटियों के बेटे, उनके बेटे, ये तमाम जीन्स ट्रांसफर होते चले जा रहे, तमाम जीन्स जो है ट्रांसफर होते चले जा रहे, जेनेटिक जो ह्यूमन जेनोम की जो बात आ रही है आज, तो हमारे कुरान के, कुरान और हदीस के हर एस्पेक्ट जो है साइंस से प्रूफ होते चले जा रही है। तो यहाँ एक जेनेटिक कंटिन्यूटी का इशारा दिख रहा है, देखो तुम ही लोगों में से तुम्हारे जोड़े बनाए और फिर तुम्हारी बीवियों से बेटे बनाए, बेटों से पोतरे बनाए, यानी पूरा जेनेटिक कंटिन्यूटी चले आ रही है। और फिर वो रज़क़ना हूँ कुम मिन तैयबात, और तुमको तैयब में दो माने आते, फायदे की भी माने आते और पाकी के भी माने आते, और तुमको पाक फायदेमंद चीजों को जो है तुम्हारा, तुमको रिस्क दिया। आप जो रिस्क खाते हैं, गेहूं चावल तरकारी भाजी, ये फायदा मंद है या नुकसान देह? कहीं बीमारी है, चलिए भाई शुगर है, शुगर मत खाइए, वो बात अलग है, बीमारी की बात अलग होती है, लेकिन जितने खाने की चीजें हैं इसमें पूरी न्यूट्रिशन है, पूरे फायदे की। कौन दे रहा है ये खाने के लिए, कौन दे रहा है? वेजिटेबल्स हो या मीट हो या जो भी हो, बातिली यूमिनूना वो भी नेमत अल्लाह ही हम यकफुरून, तो ये क्या बातिल में भी ईमान लाते हैं, बातिल गैर अल्लाह के साथ अमन में आ जाते। डायरेक्टर साहब के पास जाके बोले साहब मेहरबानी है आपने कोई इंक्रीमेंट दिला दिए, ट्रांसफर रोक दिए, हालांकि अल्लाह ताला इंक्रीमेंट दिलाए ट्रांसफर रोक के, आप तो गैर अल्लाह का जो है आप जाके वो करते हैं, और अल्लाह ताला की नेमतों के जो है आप यकफरून के दो माने आते हैं, वो क्या है? कुफर करना, नाशुक्री करना, अल्लाह ताला की नाशुक्री करते हैं, दूसरों का शुक्रिया अदा करते हैं, अल्लाह ताला का इनकार करते हैं, दूसरों की हुकूमत को मानते हैं। वो याबदूना मिन दूनिल्लाह मा ला यमलुकु लहु रिज़्क़ुम मिनस समाई वल अर्ज़ि शैय्या वला यस्ततीउन, और फिर अल्लाह ताला से हटके ऐसे लोगों की गुलामी करते हैं, ऐसे लोगों की परस्तिश करते हैं जो आसमान और जमीन में कोई रिस्क नहीं दे सकते। कौन देता साहब रिस्क? जरा गौर से सोचिए, कौन देता रिस्क? ना किसान देता, ना गवर्नमेंट देता। वला यस्ततीउन, और इनमें इसकी इस्तेताअत ही नहीं, ये रिस्क देने की इनमें ना, इनमें कंट्रोल देखे, यमलिक का मतलब ये होता है कि उनको कोई कंट्रोल नहीं है, कोई रिस्क पे कंट्रोल नहीं है। यस्तती उनका मतलब ये होता है कि इनमें कोई इस्तेताअत ही नहीं होती। ला यस्तती उनका मतलब होता है इनमें कोई इस्तेताअत ही नहीं, ना कंट्रोल है ना इस्तेताअत है, जमीन और आसमान में कहीं जो अल्लाह से हटके जिनको मखलूक में से पुकारते हो। तो अब ये दूसरों को जो पुकारते हैं उसमें बाज़ वक्त जो है बुत हैं, झाड़ पहाड़ हैं, इस तरीके से बुजुर्ग हैं, लोग हैं, स्टेटस है, ऐसे लोगों को गैर अल्लाह को पुकारते, अल्लाह को पुकारो। वला तज़रिबू लिल्लाहिल अम्साल, अब अल्लाह ताला के लिए मिसालें मत बयान करो। खैर गैरों की मिसाल छोड़िए, हमारी मिसाल हम लेते हैं कि भाई किसी से कुछ बात हुई, भैया फलानी जगह आप जाके मांगते हैं, गलत है, कुरान और हदीस के मिजाज के खिलाफ है, तो बोले साहब आप देखते नहीं, यहाँ मिनिस्टर के पास आप डायरेक्ट जाते, आप पीए के पास जाते पहले, तो पीए जाके मिनिस्टर को बोलता, तो वैसे हम अल्लाह ताला के पास डायरेक्टली नहीं जाते, हम पीए के पास जाते हैं, पीए हैं पूरे में। फिर वो सूरह फातिहा जो हर नमाज में रिपीट होती है, वो क्यों बोल रहे हैं कि इया का नाबूदो इया का नस्तईन, हम तेरी इबादत करते हैं, तुझी से मांगते हैं। फिर एक जगह अल्लाह ताला सूरह बकरा में फरमा रहे हैं कि ये बंदे मेरे बारे में पूछते हैं, इनसे कहो कि मैं करीब हूँ, पुकारने वाले की पुकार सुनता हूँ, लिहाजा ये भी मेरे अहकाम पे अमल करें। जब अल्लाह ताला करीब है, असमाउल हुस्ना में है करीब, अल्लाह ताला जब करीब है तो अल्लाह ताला से ज्यादा करीब कोई हो ही नहीं सकता। अभी आप देखे ब्रेन इम्पल्स 350 मिली सेकेंड बिफोर इंटेंशन आ रहा है, इरादा करने से पहले ब्रेन इम्पल्स आ रहा है, उससे पहले अल्लाह ताला को मालूम है कि मैं क्या करने वाला हूँ। तो इनको छोड़ के जो है दूसरों के बारे में मिसालें वो करते हैं, इन्नल्लाह यालमू वअंतुम ला तालमून, और अल्लाह ताला जानता है और तुम नहीं जानते। ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء مم، یعنی اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کرتا ہے دو لوگوں کی، کہ ایک غلام ہے جو کسی کے قبضے میں ہے، اس کو کسی چیز پہ کوئی قدرت نہیں، اور دوسرا ہے وہ مر رزقناہ منہا رزقا حسنا، اور دوسرے کو ہم نے اپنے طرف سے بہترین رزق دیا ہے، فہوا ینفق منہ سرا و جہرا، اور وہ ہمارے وہ جو ہے خرچتا ہے، چھپا کے بھی خرچتا ہے اور دکھا کے بھی خرچتا ہے، ہل یستوون، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے؟ بھائی وہ فقیر برابر ہو سکتا ہے اس امیر کے؟ تو غلام برابر ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا؟ مثال اگر لینا ہے تو مثال یہ لو، بھائی امیر آدمی امیر ہے، غریب تو غریب ہے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ، ساری تعریف سارا شکر اللہ تعالیٰ کا ہے، بل اکثرهم لا یعلمون، لیکن میجورٹی ایسے ہیں یہ جانتے نہیں ہیں کہ ساری تعریف اللہ کے لیے، کیونکہ تمام کام اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. دیکھیے ہم کے معنی بھی ایک جگہ قرآن میں سمجھائے گئے، مجھے ریفرنس یاد نہیں ہے، کہ یہ ایسی چیزوں کی تعریف چاہتے ہیں جو یہ کرتے نہیں، تو تعریف اسی کی جاتی ہے جو کچھ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کرتا ہے، بھائی ہم کو پیدا کر کے چھوڑ دیا، اب ہم جو بھی کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے کرتے ہیں، تو ساری تعریف اللہ کے لیے ہے. لیکن اکثر لوگ جو ہے میجورٹی یہ نہیں جانتے. وضرب اللہ مثلا رجلین، اور پھر اللہ تعالیٰ دوسرے دو مردوں کی مثال بیان کرتے ہیں، یہ فالوورز کی ہے، وہ خالق اور مخلوق کی ہے، یہ فالوورز کی ہے. احدہما اب کمو لا یقدر علی شیء وہو کل علی مولاہ، یعنی ان میں سے ایک ایسا ہے جو گونگا ہے اور کسی چیز پہ قدرت نہیں رکھتا، اور وہ اپنے مالک پہ ایک بوجھ ہے. اینما یوجہ یا لا یاتی بھی خیر، وہ جس ڈائریکشن میں بھی جاتا ہے کوئی بھلائی واپس لے کے نہیں آتا. مالک کے لیے ایک بوجھ ہے، گونگا ہے، بیان بھی نہیں کر سکتا، ایک بندہ ایسا ہے اس کا، ایک غلام ایسا ہے، اور کبھی جو ہے بھلائی لے کے نہیں آتا، ہمیشہ نقصان لے کے آتا ہے. یہاں وجہ کے معنی بھی سمجھیے، یوجہ چہرہ ادھر کرتا نہیں مگر ڈائریکشن ہے، وجہ کا مطلب ڈائریکشن، کہ جس ڈائریکشن میں بھی اس کو بھیجا جاتا ہے خیر نہیں لاتا. حل یستوی ہوا وہ من یامر بالعدل وہو علی صراط مستقیم، کیا یہ اس آدمی کے برابر ہو سکتا ہے جو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے اور وہ سیدھے راستے پہ ہے؟ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی کوئی دوسرا آدمی کون سا ہے، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے اور صراط المستقیم جنت کے راستے پہ ہے. تو اب یہاں دو مثالیں بیان کر رہے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کی اور بندوں کی، یعنی ایک امیر آدمی کی اور ایک غریب آدمی کی. فالوورز میں ایک بہترین آدمی کی جو عدل اور انصاف سے کام کرتا ہے، اور دوسرا جو نقصان ہی نقصان اپنے مالک کے پاس لاتا ہے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہو سکتی ہے کہ بہترین جو ہے عدل اور انصاف سے کام کرتے ہیں، اور ان کو جو ہے نعوذ باللہ دوسروں سے ملا رہے ہیں، دوسروں سے کمپیئر کر رہے ہیں. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور جو بھی غیب ہے جو نہیں دکھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے. اب غیب پاسٹ ٹینس میں بھی ہے، یوسف علیہ السلام کے واقعے کے لیے بھی غیب کی بات آئی جہاں تک مجھے یاد ہے، یہ دروازے کے پیچھے کیا ہے ہم کو نہیں معلوم، وہ بھی غیب ہے ہمارے لیے. اب یہاں سے میں گھر جاؤں گا نہیں جاؤں گا، ختم ہو جاؤں گا، یہ بھی غیب ہے، فیوچر نہیں معلوم میرے کو. تو غیب جو ہے تینوں چیزیں ہو گئی. اب یہ سائنٹیفکلی یہ دریافت ہوا ہے کہ 90% آف دی یونیورس از انسین، مور دین 90% آف دی یونیورس از انسین. لائف کے بارے میں ایک اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ 99% آف دی لائف کریٹڈ از ایکسٹنکٹ، ختم ہو گئی. آپ جو اب دیکھ رہے ہیں 1% آف دی لائف کریٹڈ ہے، 1% آف لائف ہے، یہ میں سائنٹیفک اسٹیٹمنٹ بول رہا ہوں آپ کو. تو سوچ کے دیکھیے آپ، تو یہاں یہ بات آ رہی ہے کہ جو بھی آسمان و زمین میں ہے غیب ہے جو نہیں دکھتا ہے، اس کا وہ اللہ تعالیٰ ہی کا ہے وہ غیب بھی، جیسے بلیک ہولز وغیرہ ہیں. دیکھیے ایک مثال چھوٹی سی دے دیتا ہوں میں، کہ ایک بلیک ہول حال میں ڈسکور ہوا، 14 بلین ایئرس پرانا ہے، 3 بلین ٹائمز ہیویئر دین دی سن، 3 بلین ٹائمز ہیویئر دین دی سن. سن کا ڈائمیٹر 1,400,000 کلومیٹر ہے، وہ چھوٹا بلب دکھتا ہے اس واسطے کہ 93 ملین مائلز دور ہے ہمارے سے، 93 ملین مائلز دور ہے، اس لیے چھوٹا دکھتا، 14,00,000 کلومیٹر کا گولا، جیسا ہوائی جہاز چیل کے ویسا دکھتا، اترے تو دیکھے تو یہ بلڈنگ سے بڑا ہے. तो यहां बात समझना है कि ये सब अल्लाह ताला का है, और अब यहां बात समझना है कि वह मा अमरु साती इल्ला कलमहिल बसरी और हुआ अखरज। और ये जो सात का एंड का जो मामला है वो पलक झपकना या उससे भी खरीब है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शयइन खदीर, और बेशक अल्लाह ताला हर चीज पे कुदरत रखता है। अब यहां दो तीन अल्फाज समझिए। सात देखिए, अब जो एंड की बात आ रही है हम लोग फिर उर्दू में कंफ्यूज करते थोड़ा। पहला सूर जब फूका जाएगा तो ये पूरी कायनात खत्म हो जाएगी, ये सात है। दूसरा सूर जब फूका जाएगा तो तमाम लोग खबरों से उठ खड़े होंगे, खियामा, खियाम बोले तो खड़े रहना, वो खियामत है। हम एंड ऑफ द यूनिवर्स को खियामत बोल देते हैं, ये कंफ्यूजन हो रहा है, ये कंफ्यूजन को दूर करना है। एंड ऑफ द यूनिवर्स जो होगा, जो यूनिवर्स खत्म होगी उसके लिए सात लम्हा होगा। कैसा लम्हा होगा? कलमहिल बसर, पलक झपकने के वैसा, और हुआ अखरब या उससे भी कम। ये 1450 बरस पहले ये डिस्क्रिप्शन दिए कि ये यूनिवर्स कैसा एंड होएंगी, पलक झपके तक या उससे भी कम में एंड हो जाएगी। साइंटिफिक रिसर्च हुआ, पूरे यूनिवर्स का मॉडल फीड करे, कंप्यूटर डेटा जितना था फीड करके वो लोग निकाले कि द यूनिवर्स विल कोलैप्स इन, वन डिवाइडेड बाय वन फॉलोड बाय 43 जीरोज ऑफ ए सेकेंड। 1450 बरस पहले की किताब, एक सेकेंड का, ये देखिए एक सेकेंड का सवा हिस्सा बोले तो क्या बोलते हैं आप, एक तकसीम करना उसको डिवाइड करना 100 से, 1000वां हिस्सा बोले तो एक डिवाइड करना उसको 1000 से, एक उसको डिवाइड करना एक के बाद 43 जीरोज आना एक सेकेंड के। अब उसको मैथमेटिकली लिखते 1 × 10⁻⁴ ऑफ ए सेकेंड, हम हिसाब भी नहीं डाल सकते। कुन फयकुन, तो ये 1450 बरस पहले आम आदमियों को समझाने के लिए एक जुमला आया, कलमहिल बसर और अखर, यानी एक पलक झपकने की तरह या उससे भी कम। कितना कम? इतना कम। तो ये कोई इंसान तो नहीं लिख सकता था कि एंड ऑफ द यूनिवर्स ऐसा होगा, कोलैप्सिंग यूनिवर्स, द बिग क्रंच, द बिग बैंग। आ गया सूरह अंबिया 21st chapter 30th आयत में आ गया कि जमीन और आसमान एक जगह थे और हमने इसको अलग किया। फिर सूरह अंबिया की 104th आयत में आया कि हम ये आसमानों को लपेट देंगे जैसा लिखने का कागज, हम इसको फिर क्रिएट करेंगे, ये वायदा है, हम करके लेंगे, ऑसिलेटिंग यूनिवर्स। यहां आ रहा कि घड़ी जो है पलक झपकने के बराबर होगी या उससे भी कम, 10⁻⁴ ऑफ ए सेकेंड। आप साइंस को टिक करते चले जाइए, हाँ ये आपकी दया, वी आर इन दैट पोजिशन नाउ। ऐसी किताब को हम क्या करके रखें? आप इस पोजिशन में आप डिक्टेट कर सकते, बोलते हाँ सही है साहब, आप तो दरियाफ्त करें, सही है, कुरान में है, हमारे ये पोजिशन में है। तो ये जो आज का इल्म हासिल करे हुए हैं उनकी जिम्मेदारी है ये कुरान को लोगों तक पहुंचाना, दूसरों तक पहुंचाना कि देखिए ये हमारी किताब में ये बातें हैं। बल्कि इन्नल्लाह अला कुल्ली शयइन खदीर, और बेशक अल्लाह ताला हर चीज पे जो है कुदरत रखता है। अल्लाह अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तालमूना शयइन, जो अल्लाह ताला ने तुमको अपनी माओं के पेटों से निकाला, वोम से निकाला, कोई चीज का तुमको इल्म नहीं था। इल्मी थे, देखिए सीधी सी बात है, ला तालमूना शैया, कोई चीज का इल्म नहीं था। कुछ भी पकड़ लेते थे, कुछ भी करते थे, जब तक कोई एक इंसान का बच्चा बड़ा मजबूर है भाई, हिरन का बच्चा पैदा होता जरा लड़खड़ाता फिर चलना शुरू होता, तामिल का बच्चा अंडे में से निकलता थोड़ा करता फिर पानी की तरफ चले जाता, मच्छी का बच्चा पैदा होता तीरना शुरू कर देता, इंसान के बच्चे को चलने के वास्ते 1 साल होना पड़ता। अपनी मजबूरियों को सोचिए, तुम इतने मजबूर थे तुम के चल भी नहीं सकते थे, तुम अपनी खिजा भी हासिल नहीं कर सकते थे, कुछ नहीं जानते थे। तो क्या हुआ? वो जाल लकुम समा वल अबसार वल अफीदा, तो अल्लाह ताला ने तुमको कान दिए, आंखें दिए और दिलो दिमाग दिया। तुम कान से सुन के लर्न करे एजुकेशन लिए, आंखों से देख के एजुकेशन लिए, ब्रेन में प्रोसेस करे तुम एजुकेशन लिए। अगर अंधा बनाता, अगर गूंगा बनाता अगर बेवकूफ बना था क्या कर लेते थे आप? देखिए ब्रेन की प्रोसेसिंग बड़े मजे की है। अब मैं आपसे बात करूं एकदम अच्छा आके कहता, मैं बात कर रहा हूं, ब्रेन को सिग्नल गया, ब्रेन में एनालिसिस हुआ, ब्रेन बोला कि नहीं ये मच्छर है, मक्खी नहीं है, वो चुमटी नहीं है, मच्छर काटा है। राइट हैंड को इंस्ट्रक्शन हुआ कि मारो उसको, हालांकि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, आपसे बात कर रहा हूं, लेकिन ऑटोमेटिकली इंस्ट्रक्शन, रिसेप्शन एंड रेस्पॉन्स का जो सिस्टम बनाया अल्लाह ताला, इसको गौर करिए, गौर करके झुक जाना है अल्लाह ताला के सामने। हम बरखिलाफ उसके जो है अपनी अना के, या आप हमसे घिस ले रहे, हमारा इल्म किधर, आपका इल्म किधर, ये हालत है। कौन दिया बाबा इल्म? वला यू तू ना बिशई मिन इल्मी इल्ला बिमा शा, तुम उनके इल्म में से कुछ ले ही नहीं सकते सिवाय उसके के जो वो चाहे। वो दिया तो है, अगर वो ले लिया तो क्या करेंगे, बढ़ने मारेंगे लोग रस्तों पे। लअल्लकुम तशकुरून, ये काय के दिए, ताकि तुम एक्नॉलेज करो, मान लो अल्लाह ताला को, शुक्र करो अल्लाह ताला का कि या अल्लाह दिखा रहा है, सुना रहा है, दिमाग जगह पे रखा है, चल रहे फिर रहे, कोई भी इसमें फर्क आ जाता तो जो है क्या कैफियत होती थी। तो शुक्र अदा करो, मानो अल्लाह ताला को। अलम यरो इला तैरो मुसखिराति फिल जव समाए, क्या तुमने परिंदों को नहीं देखा जो समा के जो है फिजा के जो गैप है उसमें तैरते फिरते हैं। मा युमसिकु हुन्ना इल्लल्लाह, उनको कोई थामे हुए नहीं है सिवाय अल्लाह के, परिंदे हवा में घूम रहे। अब आप देखिए ये परिंदों की पूरी एरोडायनेमिक्स एक सब्जेक्ट है, पूरे सब्जेक्ट सारे, इस वास्ते मैं पोर्शन खत्म नहीं कर सक रहा हूं। एरोडायनेमिक्स है पूरे, परिंदों को देख के हवाई जहाज बना। मैं एक हिमालयन रेंजेस में एक कीड़ा देखा था, बिल्कुल ट्रेन के वैसा था, ट्रेन के ऐसे सेगमेंट्स हैं उसके जैसा डब्बे रहते पहाड़ी एरिया में, मतलब ये देख के बना है ट्रेन, परिंदों को देख के जैसा हवाई जहाज बनाए। अब क्या है, अब आप कंपेयर करिए कैसा बना है। परिंदे में जान है, हवाई जहाज में इंजन है। परिंदे में शऊर है, हवाई जहाज में पायलट है, पायलट भी बाशऊर है। पूरा पूरा कॉपी करे, उसका शेप भी परां भी कॉपी करे, वो पूरी बॉडी भी कॉपी करे, पूरे परिंदों को देखे परों से, पूरी हिस्ट्री अगर आप हवाई जहाज की देखे तो पहाड़ों पे गए, परों से कूदे, मर गए, कितने चीजें हुए, लेकिन परिंदों से लिए। तो अब अल्लाह ताला यहाँ इशारा दे रहे हैं कि ये बर्ड्स ही नहीं बल्कि ये जो तुम एरोप्लेन भी जो बनाए हैं वो एरोडायनेमिक्स के जो लॉज हमने बनाए हैं उसके मुताबिक चल रहे हैं, तो हवा में तैर रहे हैं। मछली पानी में कैसा तैरती है, झाड़ झाड़ कैसा चलता है, इसमें ये तमाम जो है लॉज ऑफ नेचर अल्लाह ताला ने बनाए। फिजाली का लिया आया तिली कौमी यूमिनून, ये तमाम चीजों में निशानियां हैं ऐसे लोगों के लिए जो ईमान लाते। अब देखिए, अब हमारे पास एक ग्रेविटी है जो खींच रही, एक शऊर है जो ग्रेविटी के खिलाफ काम कर रहा है, कॉन्शियसनेस। आप किसी को खड़े खड़े इंजेक्शन दे दीजिए बेहोशी का, नन बला गिर गया, ग्रेविटी के अगेंस्ट जो फोर्स काम कर रहा है वो गिर जा रहा है। तो इस तरीके से बर्ड का शऊर है जो हवा में काम कर रहा है ग्रेविटी के खिलाफ, अगर उसका शऊर चले जाए और एरोडायनेमिक्स के जो लॉज हैं उसके बॉडी का शेप जो है वो तमाम वो हो गया, तो अब क्रिकेट का गोला है वो भी हवा में थोड़ी देर मौलक रहता है लेकिन आके गिरता कहीं ना कहीं, तीरता नहीं रहता हमेशा के वैसे। बरखिलाफ उसके ये फल्की अजसाम के हेवनली बॉडीज के गोले हैं जो 15 बिलियन ईयर से तैर रहे हैं, उधर इशारा जाइए लेके जाइए। ये क्या अल्लाह ताला की कुदरत है। वल्लाहु जाला लकुम भी मिन बुयूतिकुम सकना, और तुम्हारे घरों में अल्लाह ताला ने तुम्हें आराम दिया है। वह जाला लकुम मिन जुलूदिल अनामी बुयूता, और फिर जानवरों के चमड़ों से जो है तुम्हारे घर बनाने का तरीका तुमको बताया है। तस्तखिफूनहा यौमा ज़ानतुम ज़ानिकुम व यौमा अखामतिकुम, यानी तुम उसको हल्का पाते हो जिस दिन तुम सफर के लिए निकलते हो, जिस दिन जो है खियाम करते हो, ठहरते हो। वह मिन अस्वाफिया, और उसके ऊन में यानी वुल में, वह अदबारिया, और रूए में यानी फर में, वह अशारिया, उसके बालों में, असासम व मतान इलाहिन, तुम्हारे लिए सामान है एक वक्त मोयन के लिए सामान। अब सिंथेटिक चीजें, अब स्वेटर्स अब बनने लगे नायलॉन के, इसके उसके फाइबर्स के, पहले जो बनते थे पूरा जो है वुलन कपड़े रहते थे, ब्लैंकेट्स वुलन रहते थे, हमारे बचपने में खुद वुलन स्वेटर्स रहते थे, वुलन ब्लैंकेट्स रहते थे, बहुत गर्म रहते थे। अब ये क्या निजाम है, एक बकरे को जो है आप पूरा वुल निकाल दो, फिर थोड़े दिन के बाद देखो फिर वुल आ जा रहा, आपकी खुद दाढ़ी देखिए, बालना देखिए, नाखून देखिए। तो ये अल्लाह ताला किस लिए, हमारे लिए जो है ये पूरा इंतजाम किया है कि एक वक्त तक के फायदा लिए। वल्लाहु जाला लकुम मिन मिम्मा खलका जिलाला, और अल्लाह ताला ने जो बनाया उसमें तुम्हारे लिए साये बनाए। पूरी फिजिक्स मौजूद है, ओपेक बॉडीज कास्ट शेडोज, ये छत ओपेक है, रोशनी पास नहीं हो सकती, इस वास्ते छांव में बैठे हुए। अगर ये ट्रांसपेरेंट रहता तो आ जाती। तो ये ओपेक कौन बनाया, ये अल्लाह ताला ने बनाया। पूरी साइंस बनी हुई है। इधर आप बॉटनी पढ़े, जुआलॉजी पढ़े, एरोडायनेमिक्स पढ़े, मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़े। ये मैं नाइंसाफी कर रहा हूं जो इतना तेज जाके सूर्य को जो है कुछ और आयतें पढ़ने की कोशिश करो। एक एक आयत पे एक एक जिंदगी गुजर जाना चाहिए, इतनी जो है इसमें मवाद है कि साये बनाए अल्लाह ताला। अगर ओपेक नहीं बनाता तो साये नहीं रहते थे, हालत जिंदगी नामुमकिन हो जाती थी। वह जाला लकुम मिन जिबाली अकनानन, और जहाल पहाड़ों में तुम्हारे लिए पनाहगाहें बनाई। पहले के जो लोग रहते थे, अभी समूद का मदियान साले वगैरह में अगर आप देखें तो जो है वो केव्स अभी मिलते, एजेंटा एलुरा के केव्स मिलते हैं आपको, उसमें रहते थे, पनाहगाहें बनाई। वह जाला लकुम सराबीली सराबीला तखीकुम, और फिर तुम्हारे लिए कपड़े बनाए, तखीकुम ली हर्री, जो गर्मी से तुमको बचाते हैं। वह सराबीला तखीकुम भी बासकुम, और ऐसे कपड़े बनाए जो तुमको जंगों में, जंग में काम आते, लोहे के जो जर्रा बख्तर वगैरह पहनते हैं। अब देखिए यहाँ एक तो तखी का माने समझिए, तखीकुम कुमुल हर्रु, गर्मी से बचा, ये तखवा इसी से है, बचाने के माने आते हैं, गर्मी से बचाते हैं, दुश्मन के हमले से बचाते हैं। तो तखवे का मतलब क्या है, गुनाहों से बचना, अल्लाह से डर के गुनाहों से बचना। फिर उसके बाद में कहा कि जालिका कजालिका युतिमु नेमतुहु अलैकुम लअल्लकुम तस्लिमून, इस तरीके से तुम पे अल्लाह ताला अपनी नेमतें मुकम्मल करता है ताकि तुम सरेंडर करो, सबमिट करो, तस्लिमून इस्लाम लाओ, ऐसे माने कर दिए, सरेंडर करो। ये सब देखे मैं जो शुरू में बात बोला, ये सब सुन के झुक जाओ सामने अल्लाह ताला के। यहाँ तो हर आयत पढ़ने के बाद सजदा मालूम होता, ये तमाम अल्लाह ताला की बड़ाई मानी मालूम होने के बाद तुम सरेंडर करो। फइन तवल्लौ, और अगर ये पलट जाए, फइन्नमा अलैकल बलागुल मुबीन, तो आपका जिम्मा सिर्फ बात को पहुंचा देने का। रसूल और नबी का जो जिम्मा होता है वो सिर्फ बात को पहुंचाने, जाहिर उनका वो है तो दूसरों का भी जो तबलीग में लगे हुए हैं उनका भी जिम्मा बात को पहुंचा देने का होता है। और यारिफूना नेमत अल्लाही सुम्मा यनकिरूनहा, ये अल्लाह ताला की नेमतों को पहचानते हैं उसके बावजूद इनकार करते हैं। सोचते ये सांस चल रही, जाहिर है अल्लाह ताला की वजह से पूरा सिस्टम चल रहा, सांस चल रही, दिल चल रहा, वो कर रहा, फिर उसके बाद में इनकार करते, ऐसी हरकतें करते जिससे जो इनकार जाहिर होता है, जानते बूझते अल्लाह ताला की नाशुकरी करते, इनकार करते हैं। वो अक्सर हुमुल काफिरून, और इसमें से मेजोरिटी कुफर करने वाले, नाशुकरी करने वाले, इनकार करने वाले। जाहिर है 6 बिलियन पॉपुलेशन इस वक्त है, अब लेटेस्ट फिगर जो आ रहा है कि 1.3 या 1.6 बिलियन मुसलमान है, 25% मुसलमान है, 75% अलग है। तो मेजॉरिटी कुफर करता है, मेजॉरिटी इनकार करते। अब आप ये अक्सर हुमुल काफिरून को भी साइंटिफिक एनालिसिस करके देख लीजिए कि 4.5 बिलियंस रेफ्यूज, दे डोंट एक्सेप्ट, वो भी कुरान कहा।